समिति एवं संस्था, एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इस रूप में उसकी असंख्य आवश्यकताएं हैं। अपने अस्तित्व को बनाए रखने और समुदाय में अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति अत्यंत आवश्यक है। अपनी इन विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कई तरीके अपना सकता है। मैकाइवर तथा पेज ने इस संबंध में तीन तरीकों का उल्लेख किया है। प्रथम, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का अकेला प्रयत्न करे। द्वितीय, वह अपने शारीरिक बल के आधार पर दूसरों से संघर्ष करके अन्य लोगों से आवश्यक वस्तुएं छीनकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति करे। तृतीय, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों की सहायता प्राप्त करे, उनके साथ सहयोग करे। मनुष्य साधारणतः इस तीसरे तरीके को अपनाकर ही अपने हितों, उद्देश्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस विधि को अपनाकर वह समिति का निर्माण करता है। यहीं से समिति की स्थापना होती है। समिति की परिभाषा एवं अर्थ, डिफिनिशन एंड मीनिंग ऑफ एसोसिएशन। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। फेयरचाइल्ड के अनुसार, समिति का एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है और जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार, समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। आगवर्न एवं निम्फाकाफ के अनुसार, समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संक्षेप में, समिति को मनुष्य के विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिसकी अपनी एक कार्यकारिणी भी होती है। समिति की विशेषताएं, लक्षण। नंबर एक, व्यक्तियों का समूह। समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं और क्योंकि व्यक्ति मूर्त प्राणी है अतः समिति एक मूर्त संगठन है। व्यक्तियों के अभाव में किसी भी समिति की कल्पना नहीं की जा सकती है। नंबर दो, निश्चित उद्देश्य। समिति के एक या कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। कुछ व्यक्ति अपने सामान्य हितों को लेकर ही एक समिति का गठन करते हैं। किसी भी उद्देश्यहीन समूह को समिति नहीं कहा जा सकता। नंबर तीन, विचार पूर्वक स्थापना। समिति एक विचार पूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है। जब कुछ लोग सामूहिक रूप से मिलकर अपने किसी उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो वे एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसे समिति कहा जाता है। नंबर फोर, एक निश्चित संगठन। प्रत्येक समिति का एक निश्चित संगठन होता है। संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्यों को ठीक से प्राप्त नहीं कर सकती। संगठन के आधार पर ही एकता और सहयोग की भावना पनपती है। नंबर फाइव, नियमों पर आधारित, बेस्ड ऑफ रूल्स। प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम, उपनियम आदि होते हैं जिनके माध्यम से सदस्यों के आचरण को निर्देशित या नियमित किया जाता है। नियमों के विरुद्ध आचरण करने वालों को समिति दंडित कर सकती है और यहाँ तक कि सदस्यता भी छीन सकती है। नंबर छः, ऐच्छिक सदस्यता। किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना पूर्णतः व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। वह अपने हित या रुचि के अनुसार किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है और जब चाहे तब सदस्यता से त्यागपत्र भी दे सकता है। किसी समिति का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। नंबर सेवन, अस्थायी प्रकृति। समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक बनाई जाती है और इन उद्देश्यों के पूरा होने पर उसे समाप्त कर दिया जाता है। इसी दृष्टि से समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। नंबर एट, औपचारिक संबंध। समिति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की प्रकृति औपचारिक होती है। व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है और इन समितियों में सभी सदस्यों के साथ वह घनिष्ठता के संबंध स्थापित नहीं कर पाता। नंबर 9, साध्य नहीं होकर साधन। कोई भी समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र होती है, अपने आप में साध्य नहीं। जब कोई व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनता है तो क्लब उसके मनोरंजन का साधन है, न कि अपने आप में साध्य। अब समिति के प्रकार एवं उदाहरण। टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एसोसिएशन। समिति और हित या उद्देश्यों के बीच गहरा संबंध है। हितों, रुचियों या उद्देश्यों की भिन्नता के कारण ही अनेक प्रकार की समितियां देखने को मिलती हैं। सभी समितियां मुख्यतः निम्न प्रकारों के अंतर्गत वर्गीकृत की जा सकती हैं। आर्थिक समितियां, व्यापारिक समितियां, मजदूर संघ, व्यावसायिक समितियां आदि। नंबर 1, राजनीतिक समितियां, राजनीतिक दल। नंबर 3, सांस्कृतिक समितियां, धार्मिक समाज और रामकृष्ण मिशन। नंबर 4, शैक्षणिक समितियां, समाजशास्त्र परिषद, वैज्ञानिक संघ, शिक्षा मंडल। नंबर 5, मनोरंजनात्मक समितियां, व्यायामशाला, क्लब, नाट्यशाला, खेलकूद परिषद। नंबर 6, सेवा एवं सामान्य कल्याण समितियां, अनाथालय, हरिजन सेवक संघ, कानूनी सलाहकार समिति, आदिवासी कल्याण परिषद। कभी कभी किसी संगठन के संबंध में यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि उसे समिति माना जाए अथवा नहीं। ऐसे संगठनों में परिवार एवं राज्य आते हैं, जिन पर यहाँ समिति के उदाहरण के रूप में विचार किया जा रहा है। क्या परिवार एक समिति है? इज फैमिली एन एसोसिएशन? परिवार को कुछ लोग एक समुदाय मानते हैं, जबकि वास्तव में यह एक समिति है। परिवार को समुदाय मानने वालों का कहना है कि व्यक्ति का जीवन जन्म से मृत्यु तक परिवार में ही बीतता है। परिवार में ही बच्चे जन्म लेते हैं, पनपते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अंत में यही उनकी मृत्यु होती है। इस तरह व्यक्ति का सारा जीवन परिवार में ही बीतता है, इसलिए परिवार एक समुदाय है। परंतु यह बात किसी आदिकालीन परिवार के लिए तो सही है, आधुनिक परिवार के लिए नहीं। आधुनिक युग में कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर परिवार की स्थापना की जाती है। परिवार अपने उद्देश्यों की कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करता है, परंतु उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ नहीं होती है। यही कारण है कि व्यक्ति परिवार के अलावा उनके अन्य समितियों का सदस्य बनता है। यद्यपि यह सही है कि परिवार बच्चों के लिए एक समिति से कुछ अधिक ही है, परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे वे नवीन परिवारों की स्थापना और अनेक अन्य समितियों की सदस्यता भी ग्रहण करते जाते हैं। क्या राज्य एक समिति है? इज स्टेट एन एसोसिएशन? राज्य एक समिति है। विद्वानों का कहना है कि राज्य की स्थापना कुछ व्यक्तियों के द्वारा विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सोच विचार कर की जाती है, अतः राज्य एक समिति है। इसका संबंध प्रमुखता समुदाय के राजनीतिक जीवन के साथ पाया जाता है। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार राज्य सामाजिक संगठन के एक स्वरूप के रूप में चर्च अथवा व्यापारिक क्लब के समान ही एक समिति है, लेकिन राज्य और अन्य समितियों में कुछ अंतर पाया जाता है। राज्य की सदस्यता व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, दूसरी ओर किसी समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। इसके अलावा समिति का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता, जबकि राज्य का अपना एक भूभाग होता है। भूभाग समिति की विशेषता नहीं होकर समुदाय की विशेषता है। राज्य की अपनी प्रभुसत्ता या प्रभुत्व शक्ति होती है, जिसके माध्यम से वह कानून बनाकर एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए लोगों को बाध्य कर सकता है। प्रत्येक राज्य की अपनी एक सरकार भी होती है, जो राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्पष्ट है कि राज्य अन्य समितियों से एक भिन्न प्रकार की समिति है। इसे विशिष्ट प्रकार की महासमिति, ग्रेट एसोसिएशन माना जा सकता है। यहाँ हमें यह भी ध्यान में रखना है कि एक ही समुदाय में अनेक समितियाँ पाई जाती हैं। जैसे गांव एक समुदाय है और उसमें आर्थिक संघ, राजनीतिक संगठन, मनोरंजन संघ, महिला संगठन तथा पंचायत आदि कई समितियां दिखाई पड़ती हैं। मैकाइवर ने बताया है कि समिति एक समुदाय नहीं है, बल्कि समुदाय के अंतर्गत ही एक संगठन है।